کسان کو جو ہندوستان نے اپنے کسانوں کو اریگیشن سسٹم دیا, پائپوں کے ذریعے, الیکٹرک کے ذریعے وہ اریگیشن سسٹم سے اپنی فصلوں کو آباد کیے ہوئے, کسانوں کو آپ پش کر رہے ہیں کہ وہ اپنی زمینوں کو آنے پونے بیچ کے چلے جائیں اور زمینوں میں گھر بن جائیں, اور مگر اس میں امیر امیر سے امیر ہوتا چلا جائے گا, غریب کو کتنا آپ پش کریں گے. چند اسپانسرز ول کم بیک. بہت شکریہ ہمارے اسپانسرز کا جن کے تعاون سے بٹالہ سپر مارکیٹ سال میں صرف ایک سیل لگایا کرتے ہوتے ہیں 200 مارکم روڈ پہ, اینڈ آئی پرومس یو ول سیو ا لاٹ. دس سیل از اونلی ٹل 17 تاریخ تک ہے. میں مجھے نہ پڑھا نہیں تھا جاتا, اب آپ دیکھیے یہاں پر اگر آپ نہ بے شک نہ بھی بڑا کروں, مجھے اب زبانی یاد ہو گیا. آپ دیکھیں یہ آم کھجوریں 399 کی ہیں, جو ریگولر میرا خیال ہے 699 ہے. اجوا کی کھجور جو ہے وہ ریگولر $10 کی ہے, جو آج آپ کو مل رہی ہے $7 کی. یہاں پر جو ایک اور کھجور ہے جو ویلی گرینڈ ویلی ہے, اب یہاں پہ بھی
گولڈن ویلی
کی جو کھجور ہے اس میں بھی آپ $3 کی سیونگ کر سکتے ہیں. نیچے اگر آپ آ جائیں کلاسک مینار کلاسک, میں نے کہا $16 $17 کا مارکیٹ میں مل رہا ہے, آپ کو بٹالہ سپر مارکیٹ پہ مل رہا ہے $11.99 کا. شہد پہ سیل ہے اور بہت ساری چیزوں پہ سیل ہے. روح افزا $1 مہنگا ہے, انہوں نے $3.99 کا لگایا ہوا, ویسے آپ کو $2.99 کا کہیں اور سے مل سکتا ہے. گوشت میں بڑی سپر سیل ہے. چکن جو ہے وہ آپ کو لیگ چکن ونگز چکن کیما جو ہے $3.49 پر پاؤنڈ. بون لیس چکن جو ہے وہ $39 میں آپ کو کتنا مل رہا ہے, بون لیس چکن بون لیس لیگز جو ہیں £11 39. اے چنگی ہے, اے بہت اچھی ہے, بہت زبردست سیل ہے. یعنی بون لیس چکن ایز از, بون لیس چکن لیگ ایز از, مطلب چھلکا تو اس کو اترا ہوتا ہے نا $39 میں. ویسے یہ مین اسٹریم میں بھی پڑا ہوا ہے میرا خیال ہے $57 یا $59 کا, $20 چیپ مل رہا ہے آپ کو یہاں پہ بٹالہ سپر مارکیٹ 200 مارکم روڈ پہ. یہ تو ایسٹ اینڈ کی بات ہوگی. ویسٹ اینڈ پہ مومن حلال میٹ 1010 ڈریم کریسنٹ کا ذکر کرنا چاہتی ہوں. گوشت کے لیے پہنچیے, گوشت میں ہر چیز سیل کے اوپر ہے. روح افزا $2.99 کا مل رہا ہے, 1010 ڈریم کریسنٹ پہ جانا ہوگا. مٹن شولڈر $7.99, چکن کا کیما $3.99, چکن لیگ تھائز جو ہے $3.99, اور بریسٹ کتنے کی ہے آئی ڈونٹ نو, چکن بریسٹ کتنے کی ہے آئی ڈونٹ نو. اس کے علاوہ چاول بھی سیل پہ ہیں. ٹاپ آف دا آور اینڈ شازیہ جی از ہیئر ود دا نیوز, اسٹے ٹیونڈ پلیز.
یو آر لسننگ ٹو WTOR 770 AM یگس ٹاؤن ٹورانٹو.
770 AM دیا نشریات سنن تے حالات حاضرہ تو با خبر رہن دے واسطے نیوز انفارمیشن انالیسز الیکٹرک گڈیاں دے وچ ای آواز آفیشیل ایپ یا ساڈی ویب سائٹ eawaz.com, لوکل نمبر
6478742900. اپنی کمیونٹی دا سب تو بڑا ودیا کوالٹی والا تے سب تو پرانا سوڈی فرنیچر ہر گھر دی پہچان بن چکی ہے.
او پھر بنے بھی کیوں نہ, کیونکہ بیڈ روم سیٹ, سوفا سیٹ, میٹریسز, ڈائننگ ٹیبل, ڈیکوریٹو آئٹمز, گل کیجیے سارے گھر دا فرنیچر ودیا کوالٹی تے ڈسکاؤنٹڈ پرائز تے مل جاندا. سوڈی فرنیچر تو 3 سال لئی نو بیاج,
142 کینیڈی روڈ, برامپٹن, 9058747171.
منفرد لوازمات کے ساتھ بنائیے افطار کا ہر پکوان خاص. یہی نہیں, ریئل کینیڈین سپر سٹور پر کم قیمت میں پائیں سبھی کچھ. ریئل کینیڈین سپر سٹور کی جانب سے آپ سب کو رمضان مبارک.
یہ فارمیسی تے چھیتی نال کیتا گیا ایک اسیسمنٹ ہے. یہ 2018 تو ہن تک 80,000 تو ود نرساں دی بھرتی ہے. یہ دیکھ بھال ہے جدوں اتے جتھے تہانوں اس دی لوڑ ہوے. ontario.ca/yourhealth تے جا کے وہ سارے طریقے ویکھو جنہاں راہی اسی تہانوں دیکھ بھال نال جوڑ رہے ہاں. اس دی ادائیگی اونٹیریو سرکار والوں کیتی گئی ہے.
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਅਤੇ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਰਿਨਿਊਅਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ. ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਆਲ ਸਟੇਟ ਐਜੈਕਟ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਰਾਜਾ ਮੁਦੱਸਰ ਕੋਲ. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਤੇ ਦੋ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ $1,775 ਦੀ ਬਚਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਹੁਣੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਰਾਜਾ ਮੁਦੱਸਰ ਨੂੰ 6472903773 ਯਾਨੀ 6472903773.
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो मैनुअल जा ऑटोमैटिक क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब लो जी तीजी लोकेशन भी खोल दिया एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी आहो जी कोई अपॉइंटमेंट नहीं ड्राइव थ्रू फैसिलिटी एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप 519-622-0660 या quicktrucklube.com QTL because we care Quick Truck Lube
خدمت ذمہ داری سے بڑھ کر تعظیم عزت سے مسکراہٹ خوشی سے بڑھ کر تعلق رشتے سے بڑھ کر کیونکہ انڈس ہسپتال سے بڑھ کر اپنی زکات دیجیے پہلے سے بڑھ کر
फैशन पाकिस्तान लाउंज लेकर आ रहे हैं मिसिसागा में एक रोजा मल्टी डिजाइनर ईद एग्जीबिशन 24 12 पाकिस्तानी डिजाइनर्स के लेटेस्ट एंड यूनिक आर्टिकल्स जो ईद पर बनाएंगे आपको सबसे मुनफरिद इस बार 17 मार्च दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक प्लीज डू कम ओवर हिल्टन गार्डन इन 1870 मैथिसन बुलेवार्ड मिसिसागा डोंट मिस इट
مسلم ویلفیئر کینیڈا عرصہ دراز سے کمیونٹی کی خدمت کرتا آ رہا ہے دنیا بھر میں ہنگامی امداد پانی کے پمپ لگانا فوڈ بینک رمضان باسکٹ اور قربانی جیسے کام انجام دے رہے ہیں اس رمضان میں اپنی زکات اور صدقہ مسلم ویلفیئر کو دیں تاکہ دنیا بھر میں مستحقین لوگوں کی مدد کی جا سکے بروز جمعہ مارچ 15 دوپہر 3:30 بجے ریڈیو سازو آواز 770 AM اور ای آواز ٹی وی پر مسلم ویلفیئر کینیڈا کے لائیو ریڈیو ٹیلی تھون میں ہمارے ساتھ شامل ہوں اور دل کھول کر تعاون کریں فار فردر انفارمیشن وزٹ mwcanada.org
عائشہ یہ تم کیا سر پکڑ کر بیٹھی ہو
گھر میں مہمان آ رہے ہیں اور مجھے 10 جگہوں پر جانا پڑے گا گروسری کے لیے
10 جگہ کیوں ایک ہی جگہ ہے فاطمہ گروسرز
فاطمہ گروسرز
جی ہاں فاطمہ گروسرز مسالے تازہ سبزیاں پھل حلال گوشت میرینیٹڈ میٹ آئٹمس اور اسپیشل بیف سٹیکس بھی گروسری کا سارا سامان سازو آواز کے ریفرنس پر اسپیشل ڈسکاؤنٹ بھی میکلاگلن اور برسٹل کے انٹرسیکشن پر نیو فاطمہ گروسرز 512 برسٹل روڈ ویسٹ آف مسیساگا 9058487000 فاطمہ گروسرز سب سے زبردست
کون کہتا ہے کہ انشورنس کمپنیاں وقت پر کلیم ادا نہیں کرتی ایک اور مسکنسپشن کہ لائف کریٹیکل النس ڈسیبلٹی یا پھر ٹریول انشورنس بہت مہنگی ہیں نہیں صاحب آپ ایک بار انشور پرو کے فضل ودود سے بات کیجیے گا 28 سال کا انڈر رائٹنگ کا تجربہ ہے لائف کریٹیکل النس ڈسیبلٹی ٹریول انشورنس ہر انشورنس کے معاملے کے لیے فضل ودود آف انشور پرو 905-607-5000
اجیت سنتے ہو
اب کہہ بھی دو
کتنی دفعہ تو کہہ چکی ہوں
مگر کب
اب کچھ کہنا وہنا نہیں ہے بس لے کے جانا پڑے گا آپ کو ہیئر میکس ہیئرنگ سینٹر پر
الٹیمیٹ ہیئرنگ سولوشن نو ابلیکیشن کمپلیمنٹری ہیئرنگ ٹیسٹ
ہیئر میکس ہیئرنگ سینٹر کال شیراز 416-792-8792
رنگنگ بزنگ ہسنگ ٹائم ٹو گیٹ یور ہیئرنگ چیک
Buy one hearing aid, get one 15% off. 416-792-8792. Ultimate Hearing Solution, 416-792-8792.
ویلکم بیک اگین اینڈ 5:09 اور 17 سیکنڈ ہماری گھڑیوں میں ہو چکے ہیں اور اب لے چلیں گے آپ کو ہم کہاں پر نیوز کی جانب کہ آپ کو تازہ ترین پوری دنیا کی نیوز سنوائیں گے مگر اس سے پہلے کہ آپ کو نیوز سنوائیں ہم کچھ تھوڑا سا بزنس یہاں سے بھی تو کر لینا بھائی رمضان کا آج کچھ لوگوں کا پہلا روزہ کچھ لوگوں کا دوسرا روزہ چاہے پہلا ہو چاہے دوسرا روزہ ہو آپ کا آج آپ کی افطار جو ہے वो 7:20 पे होगी। 7:20 पे आपकी इफ्तार का टाइम है और सुबह जो खाना बंद करना है आपने मीन सहर या सुहूर, सुहूर का टाइम जो है वो 6:15 6:15 पे
17
तो है जी
6:17
नो 6:17 आज रात को था दीदी, आज तीसरा है। खबरें यहां पर थोड़ी देर के लिए रोक रहे हैं ताकि हम ये पहले मामला सेट कर लें। ओके, इस्लामिक अकॉर्डिंग टू इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ टोरंटो द बेस्ट इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ टोरंटो इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ टोरंटो यस मंडे ट्यूसडे वेंसडे वेंसडे को क्या हो गया 6:15
आज ट्यूसडे है सर।
ट्यूसडे के बाद आपके शहरी तो कल दी ना बीबी दगा था पख पला था कना था मारा था आमिर जाली ले आओ वहां से जाली पकड़ के लेके आओ वहां से ताकि हम यहां पर एनीवे मैं बता रहा हूं डोंट गेट आज रात को जब आप पहले तो आप अफ्तारी करेंगे 7:20 पे और जो आपने शहरी खत्म करनी है वो 6:15 पे खत्म करनी है क्योंकि वो होगा तीसरा रोजा। समझ में आ गई आपके बात? नहीं समझ में आई तो मेरे पास दूसरे तरीके हैं समझाने के, मैं समझा सकता हूं मगर मेरा रोजा है तो मैं चाह नहीं रहा हूं। एनीवे अच्छा और साहब अगर आपका ताल्लुक अहले तशी से है तो साहब अहले तशी वालों के लिए आज नीजे साहब आपका रोजा ही मैं बताता हूं आपको, आपका रोजा आज होगा कितने बजे ये लीजिए साहब 7:35 पे 7:35 पे अगर आप अहले तशी से ताल्लुक रखते हैं तो 7:35 पे आपका होगा और फजर का टाइम आपके लिए हमने दे दिया है साहब 6:10 पर टुमारो मॉर्निंग। ये तो बातचीत हो गई इनकी। चलिए साहब मैं डी चलता हूँ आपको कहाँ हो गए क्या हो गए 6:12 हो गए और 2 और है मेरे मगर मैं फिर भी जस्ट ट्राई टू बी नाइस पर्सन फॉर रमजान यू नो व्हाट आई मीन राइट। अस्सलामु अलैकुम
वालेकुम सलाम। मैं इसलिए आपको कह रही थी क्योंकि आपका आज पहला रोजा है तो आपको हमने 2 ज्यादा दिए हैं जिनका आज दूसरा है और कल तीसरा होगा ना। हाँ। ये 6:15 का टाइम उनके लिए है, आप जैसे मासूमों के लिए नहीं है।
अब पहले
मैं आपको ये दिखा रही थी
पहले कवर
एंड यस मेरे सिर्फ 28 रोजे रह गए हैं, आपके 29 रोजे रहते हैं तो मैं आप जैसे मासूमों को वो दिखा रही थी कि हमने आपको 2 और ज्यादा दिए हैं।
अब
दूसरा रोजा आप रखेंगे जी ये चक्कर है, ये चक्कर था समझ आइए ना। ये तो हम जैसों के लिए तीसरा रोजा 6:15 पे हमको बंद करना है, आपको 6:17 पे बंद करना है।
दो रमजान है, रमजान ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। डोंट लिसन टू हर डोंट
बहरहाल एनीवेज मुझे तो इसी चीज की बड़ी खुशी है कि आपके 29 रोजे हैं और मेरे 28 रोजे हैं। यस 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 ठीक है भाई, खुश है
आप क्या करेंगे कोई चॉइस ही नहीं है,
चॉइस ही नहीं है। देखे ना
कल का रोजा नहीं रख सकता ना मैं।
हाँ जी बस इसीलिए कहते हैं जो सोता है वो खोता है। आपने खो दिया एक रोजा।
ओह
यस आपने रोजा खो दिया।
हाँ
माजिद भाई आपका दिमाग हमेशा नेगेटिव चलता है, आप समझते हैं दुनिया का हर बंदा नेगेटिव सोचते हैं, हम आपकी तरह नेगेटिव नहीं सोचते। यस हम बहुत अच्छे लोग हैं, वैसे भी रमजान का महीना है हमको प्यार बांटना है।
अच्छा
जनाब दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय रियल क्रेडियन सुपर स्टोर। यहाँ पे बहुत जबरदस्त जो है सेल्स चल रही हैं, आप प्लीज इनके पास जाएं, इन पे आपको बहुत अच्छी एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत आराम से आप उनके स्टोर में फिर के अपनी जो पसंद की चीजें, कोई खिचड़ी नहीं बनी होती वहां पे रॉयल क्रेडियन सुपर स्टोर में, बिल्कुल आराम से घूम फिर के आप जो है अपनी ले सकते हैं। और ये जो चीजें हैं ये काफी सस्ती उन्होंने लगाई हुई है खासतौर पर रमजान से जो रिलेटेड है। वो कहते हैं जी कि हम आपका ख्याल करते हैं, एवरी इफ्तार आपकी जो हम स्पेशल बनाना चाहते हैं और उसके लिए हमने रेट्स जो है बहुत ही मुनासिब रखे हुए हैं, तो आप जरूर विजिट करें। इसके अलावा जनाब फैशन पाकिस्तान अब आप कहेंगे जी कि रमजान के महीने में फैशन, क्योंकि रमजान के महीने में फैशन नहीं करना, लेकिन ये जो फैशन पाकिस्तान जो ये एग्जीबिशन हो रही है ये हो रही है जनाब ईद के लिए, वो ईद के लिए जो है ये सारे डिजाइनर्स जो हैं पाकिस्तान से और इंडिया से आए हुए हैं और आपके ईद के जो वहां पे कपड़े हैं उन्होंने लगाए हुए हैं। जाहिर है कि रमजान के बाद ईद आएगी तो अभी उन्होंने डिस्काउंट्स पे भी लगाया हुआ है और बहुत हाई एंड जो है यहां पे डिजाइनर्स भी आए हुए हैं। तो हिल्टन गार्डन इंक के अंदर ये हो रहा है 1870 मैथिसन बुलेवार्ड मिसिसागा में। तो आप जाके अभी कम पैसों पर बजाय इसके कि ईद के पास ज्यादा पैसों पे और महंगा जो है आप पहनावा खरीदें, आप अभी जाके जो है कपड़े ले लें क्योंकि वो एक तो डिजाइनर्स के और ऊपर से अच्छी कीमत में है। ठीक है जी। अच्छा जनाब, इसके अलावा ओंटेरियो का लार्जेस्ट पाकिस्तानी हलाल बफे विलेज डेज फैसल चटा साहब होते हैं। अगर आपका दिल नहीं कर रहा, जैसे कि माजिद भाई जो हैं रोजाना यहां से खाना लेकर जाते हैं क्योंकि इनका दिल नहीं आजकल कर रहा किचन में काम करने को, तो इन्होंने बेगम को कहा कि आजकल मैं खाना विलेज डेज से लेके जाऊंगा। है जी, तो ये विलेज टेस्ट का आप भी खाना ले सकते हैं। दो इनके रेस्टोरेंट्स हैं, एक तो 4141 डिक्सी रोड मिसिसागा में है। इसको अगर आपको कॉल करना है तो आप 9052323663 पे कॉल करके अपना ऑर्डर डाल सकते हैं, वहां बैठ के भी इफ्तार कर सकते हैं। और अगर आपको ओकविल वाले ब्रांच पे जाना है तो 2294 लेक शोर रोड वेस्ट के ऊपर इनका रेस्टोरेंट है जिसका नंबर है 9052262294। ठीक है जी। अच्छा जनाब, कल हमने आपको बताया था कि हेटी के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और कनाडा के साथ साथ और भी बहुत सारे कंट्रीज, यूएस, यूरोपियन यूनियन के दूसरे कंट्रीज जो हैं वो अपने, बहुत सारों ने तो अपने डिप्लोमेट्स बुलाए हैं, बहुत सारों ने अपने एम्बेसडर्स तक भी वापस बुला लिए हैं। आज उसी सिलसिले में जो ट्रूडो साहब हैं और जो एंथनी ब्लिंकन साहब हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उसके अमरीका के, इन दोनों ने आज हेटी के जो आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर है इनसे बात की है। अच्छा जी, पहले तो ट्रूडो साहब ने बात की है, अकॉर्डिंग टू पीएमओ यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से जो एक रीड आउट आया है उसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने, ट्रूडो साहब ने कहा जी कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं, हम आपके साथ सारी ये जो क्रिमिनल गैंग्स बहुत ज्यादा वायलेंस जो उन्होंने क्रिएट की हुई है कैपिटल में और जो एयरपोर्ट्स क्लोज कर दिए हैं उसके लिए हम आपको सारी जो आपको हेल्प चाहिए वो हम आपको देंगे। हमने आपको कल बताया था कि कनाडा के में जो यूनाइटेड नेशंस के एम्बेसडर हैं, कनाडा के जो यूनाइटेड नेशंस में एम्बेसडर है बॉब रे साहब, उनकी और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट साहब की जमैका के अंदर मुलाकात हुई थी ताकि इस क्राइसिस को किया जाए कम। इसके अलावा भी और बहुत सारे हेड्स ऑफ द स्टेट जो है वहां पे गए हुए हैं। ट्रूडो साहब कहते हैं जी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हेशियंस जितने भी ये स्टॉक स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे हाथ मिलाएं, फ्री और फेयर इलेक्शंस करवाएं और एक डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है उसको वापस लेकर आएं। आपको पता ही है कि क्यूबेक जो है यहां पे कनाडा में उसमें 140,000 हेशियंस जो हैं वो रहते हैं और वो बड़े परेशान हैं अपने लव्ड वंस के लिए अपने कंट्री में। इसके अलावा यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है एंथनी ब्लिंकन साहब, उन्होंने आज कहा जी कि अमरीका 100 मिलियन यूएस डॉलर्स का जो है मल्टी नेशनल फोर्स डिप्लॉयमेंट के लिए फंड्स ऑफर कर रहा है हेटी के अंदर, और उन्होंने ट्रूडो साहब को कहा है कि भाई आप इस सारी चीज को लीड करें। ट्रूडो साहब ने उसका जवाब देते हुए एंथनी ब्लिंकन साहब को कहा है कि हमें नहीं लग रहा है कि इन कामों से कंट्री जो है वो उनका स्टेबलाइज हो सकता है, उनको खुद से जो है एक अपने प्रॉपर सिस्टम की तरफ जाना पड़ेगा जिसकी के वजह से वहां पे स्टेबिलिटी आएगी। यानी कि वही जो बात उन्होंने कही कि स्टेक होल्डर्स के साथ बात करनी पड़ेगी सबको बैठ के और मुल्क के अंदर अमन लाना पड़ेगा। यूएस ने कहा है जी, इसके अलावा हम ब्लिंकन साहब ने कहा है कि 33 मिलियन यूएस डॉलर्स और भी हम देंगे ह्यूमैनिटेरियन एड के अंदर। तो अब ये जो दोनों नेबर्स हैं बहुत क्लोजली हेटी के साथ काम कर रहे हैं। एंगस रीड का आज एक सर्वे आया है और उसके मुताबिक ओंटेरियो के जो प्रीमियर हैं डग फोर्ड साहब, उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो स्टेडी है वैसे तो पिछले 3 महीनों से, लेकिन हौले हौले नीचे आती जा रही है कंपेयर टू जब इनका री इलेक्शन हुआ था 2022 में। 2022 जून के अंदर इनकी अप्रूवल रेटिंग जो थी 34% थी और 41% थी जो कि अब 34% पे आ गई है। और ये जो हैं वन ऑफ द 3 प्रीमियर्स हैं कनाडा के जिनकी अप्रूवल रेटिंग कनाडा में 40% से नीचे है। दूसरे जो दो हैं वो क्यूबेक के प्रीमियर फ्रैंको लेगा हैं और न्यू ब्रंसविक के प्रीमियर ब्लेन हिग्स हैं। इसके अलावा लाइजोन स्ट्रेटजीज का भी एक पोल आया था, उसके मुताबिक भी अगर आज इलेक्शंस हुए तो पीसी पार्टी को 34% वोट मिलेगा, लिबरल पार्टी को 24%, एनडीपी को 16%, 17% जो थे वो अनडिसाइडेड थे। ये सर्वे जो किए गए हैं तकरीबन 4,550 कैनेडियंस पे किए गए थे बिटवीन फरवरी 28 से मार्च 26, यानी कि लोग जो है उनके बीच में डिसकंटेंटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई है कि भाई हमारी गवर्नमेंट जो है पैसे दबा दब बाहर देती जा रही हैं और जो यहां पे लोग हैं उनके पास इतना नहीं है कि वो अपने टू एंड्स जो है उनको मीट कर सके। हमारी जो फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं क्रिस्टिया फ्रीलैंड साहब, उनकी मुलाकात जो है बीसी के प्रीमियर डेविड एबी से हुई है और यहां पे सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो हाउसिंग ही रहा है। इन्होंने कहा जी कि फेडरल गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा स्टेप लेते हुए 23 स्टोरी हडसन हाउस जो है उसको बिल्ड कर रहे हैं, जिसके लिए फेडरल गवर्नमेंट ने 100 मिलियन डॉलर्स दिए थे टू बिल्ड अपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन लोन प्रोग्राम के अंडर, ताकि यहां पे फटाफट जो है घर बनाए जा सके। और उन्होंने कहा जी कि ये घर जो है ये रेंटल अपार्टमेंट्स जो है ये मिलेंगे 245 फैमिलीज को अफोर्डेबल प्राइसेस पे, जिसकी की वजह से आपकी जो हाउसिंग की प्रॉब्लम है थोड़ी सी नीचे आएगी। उन्होंने कहा जी कि नेक्स्ट मंथ अप्रैल में जो बजट आ रहा है फेडरल बजट, उसके अंदर हाउसिंग को हम बहुत बड़ा हिस्सा देंगे। उन्होंने कहा जी कि $2 बिलियन हमने बीसी के अंदर जो है वो इन्वेस्ट किए हैं, ताकि मिडिल इनकम जो लोग हैं उनके लिए रेंटल हाउसिंग बनाई जा सके, जैसे कि फायर फाइटर्स और पैरामेडिक्स हैं। और जो है ये बीसी की गवर्नमेंट जो थी उसने ये स्टेप लिया था, जिसके के बारे में जो क्रिस्टिया फ्रीलैंड बात करते हुए कह रही थी कि दिस इज अ वेरी गुड स्टेप। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि बातें बड़ी सिंपल हैं और जो मुझे बड़ी समझ आती हैं, हाउसिंग हाउसिंग हाउसिंग, सप्लाई सप्लाई सप्लाई, यानी कि आपको हाउसिंग की जरूरत है और सप्लाई आपको चाहिए है, जिसके लिए फेडरल गवर्नमेंट आपको काम करेगी, लेकिन ये सारे का सारा जो काम है ये अफोर्डेबल होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि इसमें एक स्ट्रांग इकोनॉमिक प्लान जो है आपकी जॉब्स ड्राइव करे और आपके जो यंग कैनेडियंस हैं उनको जॉब के अपॉर्चुनिटीज मिले। तो ये सारी इन्होंने बातचीत की है। आरसीएमपी ने आज बहुत ज्यादा जनाब दिया है, वार्निंग दिया है, क्योंकि जो वैंकूवर का कोमक्स वैली है वहां पे कुछ लोगों ने ब्रेक इन्स किए हैं और बहुत सारे जो हैं वहां पे घरों में जो एशियन बिजनेसमैन हैं उनके घरों में खासतौर पे करके उनके पैसे वैसे चुराए हैं, वैल्यूएबल्स चुराए हैं। उसके ऊपर आज आरसीएमपी बात कर रही थी और उन्होंने कहा जी कि हमें लगता है कि ये जितने भी विक्टिम्स थे उनकी गाड़ियों के ऊपर इन्होंने जीपीएस लगाया हुआ था और उनको वो ट्रैक करते थे कि वो घर से कब बाहर रहे। जब जब वो घर से बाहर जाते थे तो हम उनको जो ये जो हैं ये लोग ये उनको फॉलो करते थे, ट्रैक करते थे और फिर कभी कभी तो ये होता था कि बेल देके आते थे और पूछते थे कि भाई जो है होम ओनर घर पे, और जब उनको पता चलता था कि होम ओनर घर पे है तो फिर कहते थे जी क्यों सॉरी हमने गलत जगह पे फोन किया। ज्यादातर ये जो है गाड़ियों पे भी आते हैं लेकिन मोटरसाइकिल्स में भी आते थे और जो काफी वैल्यूएबल्स थे वो लेकर ये चले जाते थे। आरसीएमपी कहती है कि अगर कोई भी इस तरह का आदमी आए और आपसे कहे कि ओ सॉरी हमने गलती से आपका बेल दबाया या हम गलत घर में आए, फौरन पुलिस को उसके बारे में बताएं, डोर बेल कैमराज लगाएं, सिक्योरिटी लाइटिंग लगाएं और ये सारी अपनी जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं इनको रिव्यू करें और कोई सस्पिशियस अगर आप एक्टिविटी देखते हैं तो उसकी फौरन जो है हमें इतला करें। फेडरल गवर्नमेंट जो है जी वो अब काफी परेशान है क्योंकि यूएसए ने जो मीट और एग्स और पोल्ट्री है उसके ऊपर नए लेबल जो हैं उसकी वो वार्निंग्स जो हैं वो लेकर आ रहे हैं। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने अनाउंस किया है कि जो प्रोडक्ट ऑफ यूएसए का लेबल है या मेड इन यूएसए का जो लेबल है मीट पोल्ट्री और एग प्रोडक्ट्स के ऊपर अब हम लगाना शुरू करेंगे, ताकि पता चले लोगों को कि ये एनिमल वॉज बॉर्न रेज स्लॉटर्ड एंड प्रोसेस्ड इन यूएसए। ये जो सारी की सारी चीजें हैं इन इफेक्ट अभी क्विकली तो नहीं होंगी लेकिन 2026 से होंगी। इसके ऊपर अब जो कैनेडियन मिनिस्टर्स हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्टर लॉरेंस मैकॉले और जो इंटरनेशनल ट्रेड मिनिस्टर हैं मैरी इंग, उन्होंने इसके ऊपर बड़ा बुरा इजहार किया है। उन्होंने कहा जी कि ये हम बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करते हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है और यूएस मेक्सिको और जो कनाडा के बीच में एक बायलैटरल मीटिंग होने वाली है कोलोराडो में लेटर दिस मंथ, उसके ऊपर हम ये मुद्दा उठाएंगे, इसलिए कि मीट और लाइफ स्टॉक सेक्टर्स जो दोनों कंट्रीज के हैं वो बड़ा क्लोजली काम करते हैं और अगर आप किसी जगह पर स्टिकर लगा देंगे मेड इन यूएसए तो फिर हमारे प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा सफर करेंगे। तो जाहिर है कि ये जो इनकी यूएसए की करंट पॉलिसी है उससे ये हटके ये पॉलिसी अब है, लेकिन उनका कहना यह है कि लोगों को पता होना चाहिए कि ये सारा कुछ जो है एनिमल जो है वो यूएसए में सारा कुछ जो था पैदा हुआ था, रेज स्लॉटर्ड प्रोसेस वहां पे हुआ था, तो ये चॉइस हमको देनी पड़ेगी। ऑटवा के कार्ल्टन डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड जो है जी उसने आज बहुत ही एक यूनिक बात की। उन्होंने कहा जी कि हम एक तो वर्डिंग चेंज कर रहे हैं, ये ग्रेजुएशन सेरेमनी से हटा के इसको कमेंसमेंट सेरेमनी कर रहे हैं और अंडर आवर पॉलिसी P038 SCO ग्रेड एंड कमेंसमेंट सेरेमनीज एंड अवार्ड्स, हर वो बच्चा जो के पास नहीं भी करेगा उसको भी हम चाहेंगे कि वो इसके अंदर ग्रेजुएशन सेरेमनी का हिस्सा बने, जिसको कि अब हम कमेंसमेंट सेरेमनी बोलेंगे, और अपने पीयर्स के साथ जो है वो सेलिब्रेट कर सके। इसके ऊपर जाहिर है कि लोगों ने बहुत सी बात उठाई है कि जो बच्चा पास ही नहीं कर रहा वो कैसे इस खुशी का हिस्सा बन सकता है। वो कहते हैं जी कि नहीं, बहुत सारे बच्चे जो है वो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में, और जो है वो उसके लिए हम चाहते हैं कि वो सफर ना करें और वो भी ये खुशी महसूस करें। लेकिन इसके लिए इन्होंने एक पब्लिक फीडबैक जो है वो बिठाया है, और वो कह रहे हैं जी कि तकरीबन मार्च 29 तक आप अपना अगर फीडबैक हमको दें कि क्या ये काम सही है या नहीं है, तो फिर हम ये जो प्रपोज चेंजेस हैं ये हम लेकर आएंगे। तो अब इस चेंज का क्या मसला है? वो कहते हैं जी कि नहीं, हम हर चीज को इंक्लूसिव करना चाहते हैं और इक्विटी और डाइवर्सिटी के ऊपर हम बिलीव करते हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं जी कि बच्चे हर किसी को मौका दिया जाए। न्यूयॉर्क टाइम्स की ये जनाब स्टोरी है, और इसके मुताबिक कुछ जो डेमोक्रेट्स हैं और कुछ जो रिपब्लिकन्स भी हैं, उन्होंने अब बाइडन साहब को कहा है जी कि आप फौरन ये जो वेपन्स प्रोवाइड कर रहे हैं इसराइल को, इसको फौरन इसके ऊपर रोक लगाएं, और आप ये जो यूएस बैक्ड बल्कि ह्यूमन ह्यूमैनिटेरियन एड है इसके ऊपर जोर दें कि ये गाजा के अंदर जानी चाहिए। ये लेटर जो है लिखा है सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने, जो कि वर्मोंट से हैं, और इनके साथ जो है 7 डेमोक्रेट्स और भी हैं। उन्होंने कहा जी कि ये बाइडन साहब जो हैं ये वायलेट कर रहे हैं जो अमेरिका का फॉरेन असिस्टेंस एक्ट है, क्योंकि ये रोक नहीं रहे हैं अपनी मिलिट्री को और उसकी सपोर्ट को टू अ नेशन जो कि रिस्ट्रिक्ट कर रही है ह्यूमैनिटेरियन एड को। उन्होंने कहा जी कि आप क्लियरली नतन्याहू साहब को बोलें कि अगर तुमने हमारी बात ना मानी और ये जो तुम सारा जुल्म कर रहे हो गाजा में इसको ना रोका, तो इसके बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं अंडर आवर स्पेसिफिक यूएस लॉज। और उन्होंने ये भी कहा है कि नतन्याहू साहब का ये जो एक्शन है ये ब्रीच है ऑफ यूएस मिलिट्री एड, क्योंकि मिलिट्री एड हम लोगों के ऊपर जुल्म करने के लिए किसी को नहीं देते हैं, इमरजेंसी में यूज करने के लिए देते हैं, जो कि वो इस वक्त नहीं कर रहा है। और ये जो टर्म्स हमने लिखी हुई हैं ह्यूमैनिटेरियन एड कॉरिडोर एक्ट के अंडर, उसको भी ये फॉलो नहीं कर रहा है। तो अब बाइडन साहब इसके ऊपर अमल करेंगे या नहीं, या इसको कंसिडर भी करेंगे वो तो कुछ पता नहीं है। लेकिन फारल जी, आज नतन्याहू साहब ने कहा जी कि हम रफा के अंदर एंटर होंगे, यानी कि सारी दुनिया खली वली, हमने जो करना है हम करेंगे ही। आज स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है जी, उसकी बहुत बड़ी रिपोर्ट आ जाई है कि कैसे आर्म्स एक्सपोर्ट्स जो हैं दुनिया के अंदर बेतहाशा बढ़ते चले जा रहे हैं, और किसी जमाने में यूएसए और रशिया जो थे बहुत ज्यादा आर्म्स एक्सपोर्ट करते थे, अब इस लिस्ट में जो है शामिल हो गया है फ्रांस भी। वो कहते हैं जी कि यूएस और फ्रांस जो है लीड कर रहे हैं ग्लोबल वेपन्स रेस, और रशिया जो है उसके जो एक्सपोर्ट्स थे उसमें थोड़ा सा ड्रॉप आया है। फ्रांस ने अपना जो पिछले 7 साल में आर्म्स एक्सपोर्ट किए हैं वो इंक्रीज किए हैं 11% फ्रॉम द प्रीवियस 7.2%, और इन थैंक्स टू जो इन्होंने बेशुमार सेल्स की हैं इंडिया को उसकी वजह से। मॉस्को जो है उसका शेयर कम हो गया है 21% से 11% पे सिंस 2019, क्योंकि उसके ऊपर जो है सैंक्शंस भी हैं, तो वो बहुत ही कम कंट्रीज को अपना जो है वो वेपन्स भेज सकता है कंपेयर टू 2019 से टू 2023। तो अब वो कहते हैं जी कि ये जो फ्रांस है, वैसे तो वो कहते हैं जी इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर जो है वो उसका ओवरऑल ही जो सेल्स हैं 3.3% ड्रॉप की हैं, लेकिन फ्रांस जो है उसके ज्यादा मजे हो गए हैं। फ्रांस अब यूएसए के बाद सेकेंड बड़ा कंट्री है जिसका कि शेयर जो है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसका शेयर 34% से बढ़ के 42% को टच कर रहा था जब इसने अपना डसॉल्ट एविएशन रफेल फाइटर्स जो थे वो बेचने शुरू किए थे टू कतर, इजिप्ट, इंडिया एंड इंडोनेशिया। इंडिया जो है इसमें से दुनिया का लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर है, और इसमें से जो 33% था वो फ्रांस से आया था और 36% जो था वो रशिया से आया था। वो कहते हैं जी कि मोदी जी जो थे वो बेस्टील डे सेलिब्रेशंस जो हुई थी फ्रांस में, उसके गेस्ट ऑफ ऑनर थे, वहां पे इन दोनों ने बातचीत की थी इस सिलसिले में, और मोदी जी ने फ्रांस को कहा था कि आप एक डिफेंस इंडस्ट्री हिंदुस्तान के अंदर बिल्ड करें, और उसके बाद जो है फ्रांस ने इनको सेल किए थे 26 रफेल मरीन फाइटर जेट्स, 3 सॉर्पीन क्लास मिलिट्री सबमरीन्स। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द यूरोपियन जो कंट्रीज हैं वो भी अपना डिफेंस बूस्ट कर रही हैं और आर्म्स इम्पोर्ट्स जो हैं 94% हायर रही 2019 से 2023 से कंपेयर टू 2014 टू 2018। यूक्रेन जो है वो भी कॉन्टिनेंट का लार्जेस्ट आर्म्स इम्पोर्टर रहा। ईयू जो है वो ज्यादातर रिलाय करता है यूएस एक्सपोर्ट्स के ऊपर, 55% आर्म्स इम्पोर्ट्स जो है वो उसने यूएस से की है इन द लास्ट 5 ईयर्स। इसके अलावा 33% जो था वो पहले मंगवाता था तो अब उन्होंने और इंक्रीज किया। इसके अलावा जो ये बात की है नेटो कंट्रीज ने कि 2% ऑफ जीडीपी जो है वो आर्म्स के सॉरी डिफेंस पे स्पेंड होएगा तो उसमें भी इसके अंदर जो इम्पोर्ट्स हैं और वेपन्स की बहुत सारे कंट्रीज की यूएसए से या दूसरे कंट्री से ये और भी ज्यादा बढ़ेंगी। तो ये जाहिर है जितने आप वेपन्स खरीदेंगे उतनी ज्यादा आप लड़ाइयां करेंगे क्योंकि आपने जंग डालने के लिए तो नहीं खरीद रहे ना ये अपने वेपन्स। और जो है दबादब ये जो फैक्ट्रियां हैं इनकी यूएसए वालों की ये और आर्म्स बनाएंगी और ये तो आपको पता है कितनी बड़ी ये लॉबी है
इंडस्ट्री है।
हाँ जी साढ़ा हिस्सा कदों मुड़ेगा इसके बीच है। अच्छा जनाब इसराइल और हमास जो हैं वो बिल्कुल भी लड़ाई को रोकने के मूड में नहीं हैं और ना ही वो अपने कैप्टिव फ्री करना चाहते हैं। ये जो वार्निंग है आज कतर ने दी, कतर के जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है माजिद अल अंसारी, उन्होंने कहा जी हम कॉन्स्टेंटली कोशिश कर रहे हैं कि ये लड़ाई रुक जाए क्योंकि बेताजा 30,000 से ज्यादा बंदे जो हैं वहां पे गाजा के अंदर उनकी डेथ हो चुकी है लेकिन जो डिसएग्रीमेंट्स हैं वो कॉन्स्टेंटली चलते जा रहे हैं और हम होप कर रहे थे कि जैसे ही रमदान शुरू होगा ये सारा सीज फायर की तरफ जाएंगे चीजें लेकिन ये नहीं जा रही हैं। लेकिन कतर जो है वो ये टेम्पररी सीज फायर नहीं करना चाहता है, ये जो है परमानेंट सीज फायर करना चाहता है क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रूस जो है उसका कुछ फायदा नहीं है। हमास के जो ऑफिशियल हैं मोहम्मद नजाल उसने भी कहा है, उन्होंने कहा जी कि ये जो हॉस्टेज डील है और सीज फायर है उसके लिए हम तो राजी हैं लेकिन ये इम्पैस जो है ये है बिकॉज ऑफ प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जो कि ही इज अ स्टम्बलिंग ब्लॉक इन द वे ऑफ पीस इन द रीजन और वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है और उसकी वजह से ये बेचारे मीडिएटर्स जो के हैं कतर और इजिप्ट जो कि कॉन्स्टेंटली काम कर रहे हैं इसके ऊपर कि किसी तरह से सीज फायर हो वो नहीं हो रहा है। इसके बीच में जो है कई हजार औरतें बच्चे बूढ़े मरते ही चले जा रहे हैं और आज तो नेतन्याहू साहब ने कहा जी कि हम हर हाल में रफा में जाएंगे, किसी की बात नहीं हम सुन रहे हैं। अपने रमदान मैसेज के अंदर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है एंथनी ब्लिंकन साहब उन्होंने कहा है आज इसराइल को फिर से कि भाई ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो जाने दें गाजा के अंदर और ये बिल्कुल ठीक नहीं है और एटलीस्ट टेम्पररी जो आप एक सीज फायर 6 वीक्स है जो उसके लिए करें। आज इनकी बातचीत जो है कतर के जो फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स हैं और उनकी गवर्नमेंट है उसके साथ भी बात हो रही थी जिसके ऊपर कतर ने उनको बताया कि हम कॉन्स्टेंटली कोशिश कर रहे हैं और बाकी के भी कंट्रीज जो है वो कर रहे हैं। इसके ऊपर सऊदी अरेबिया ने भी बात की है, उन्होंने कहा जिस वक्त तक ये गाजा की वॉर नहीं रुकेगी और 2 स्टेट सोल्यूशन यहां पर नहीं लाया जाएगा इसराइल के साथ दोस्ती जो है बिल्कुल ऑफ द कार्ड्स है। इसके साथ साथ जो डेनमार्क की बहुत सारी एनजीओज जो हैं उन्होंने कहा जी हम सू कर रहे हैं जो नेशनल पुलिस और जो फॉरेन मिनिस्ट्री है क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली इसराइल को आर्म्स दे रहे हैं जिसकी की वजह से इस वॉर के अंदर बहुत ज्यादा तेजी आई हुई है। ऑक्सफैम डेनमार्क, एमनेस्टी इंटरनेशनल डेनमार्क एंड एक्शन एड डेनमार्क, इसके अलावा पैलेस्टीनियन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने कहा जी हम डेनमार्क की गवर्नमेंट को सू करेंगे अब क्योंकि ये डायरेक्ट जो इक्विपमेंट भेज रहे हैं या इनडायरेक्टली उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं उससे गाजा के अंदर सिविलियंस की डेथ हो रही है और ये वायलेट करता है डेनमार्क के जो रूल्स हैं उनको और इंटरनेशनल रूल्स को भी ये वायलेट करता है ह्यूमैनिटेरियन लॉ के अंडर। वॉर क्राइम्स और ये जो प्लॉजिबल जीनोसाइड कर रहा है इसराइल उसके लिए जरूरी है कि डेनमार्क अपने आर्म्स एक्सपोर्ट इसको रोके। तो बारा जी ना तो वो एंथनी ब्लिंकन की ना कतर की ना किसी और की किसी की बात भी जो है जी इसराइल तो मानने को तैयार ही नहीं है। एएफपी की आज एक रिपोर्ट है जी और इसके मुताबिक बांग्लादेश ने आज फ्री किए हैं अपनी जो थर्ड लार्जेस्ट जो पॉलिटिकल पार्टी है रिलीजियस पार्टी है ये उसके चीफ जमाते इस्लामी के शफीकुर रहमान साहब को 15 मंथ्स की जेल के बाद क्योंकि इनके ऊपर जो है टेररिज्म के केसेस जो थे वो लगाए गए थे। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजिद जो है वो अब चौथी दफा जो है इलेक्शन जीत के जनवरी के अंदर प्राइम मिनिस्टर बनी थी और रहमान साहब जिनकी के एज 65 है, जिस वक्त ये लोग सब इलेक्शन कैंपेन पे थे, तो इन्होंने वादा किया था कि हम शेख हसीना की जो ये करप्ट गवर्नमेंट है उसके खिलाफ लड़ेंगे, जिसकी वजह से इनको अरेस्ट किया गया था दिसंबर 2022 में, और इनको मना किया गया था कि ऑपोजिशन पार्टीज को आप ना ज्वाइन करें प्रोटेस्ट में टू आउट हसीना, लेकिन इन्होंने बात मानी नहीं थी, और इनके ऊपर भी 37 से 38 एंटी टेररिज्म के केसेस जो थे अंडर उसके लगाए गए थे। जमात इस्लामी जो है उसने कहा था कि ये जो अपोजिशन पार्टी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उसके साथ ये खड़ी रहेगी और ये प्रोटेस्ट निकालेगी। आपको पता ही है कि इन दोनों के बीच में कोलिशन गवर्नमेंट थी बिटवीन 2001 एंड 2006, तो इसीलिए जो है ये क्लोजर हैं कंपेयर टू हसीना। हसीना जो है उन्होंने जैसे ही पावर में आई थी, तो उससे पहले ही बल्कि उन्होंने कहा था कि ये इन सारे लीडर्स को जो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं इनको आप अरेस्ट करें, खासतौर पे जमात इस्लामी की लीडरशिप, क्योंकि 1971 की जो इंडिपेंडेंस वॉर इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ी थी उसमें जो है वो ये पाकिस्तान के साथ खड़े हुए थे। जमात इस्लामी कहती है कि ये जो ट्रायल्स हैं हमारे और केसेस हैं ये सारे पोलिटिकली मोटिवेटेड हैं। ठीक है जी। एंड जनाब, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय नान एंड कबाब। नान एंड कबाब पे भी बड़े अच्छे खाने होते हैं जो कि हर कोई एंजॉय कर सकता है, क्योंकि जाहिर है इसमें मसाले वगैरह नहीं है। तो अगर आप विजिट करना चाहते हैं, वहां पे कोई अफ्तारी करना चाहते हैं या खाना अपने घर में मंगवाना चाहते हैं अफ्तार के लिए या सहूर के लिए, तो आप इनको विजिट कर सकते हैं 5042 सेटेलाइट ड्राइव यूनिट फिल्मी 3 मिसेस आगा में, या कि आप इनको कॉल कर सकते हैं ऑर्डर डालने से पिकअप करने से पहले 9052829797 पे। और जनाब राजा बाजा जी बहुत सारे आपके टेरों पैसे बचाएंगे, तकरीबन 1800 के करीब, ऑल स्टेट में होते हैं ये, तो आप इनको कॉल कर सकते हैं, कॉल कर लें जी इनको, कॉल कर लें अगर आपको टेरों पैसे बचाने हैं। इनका नंबर है जी 6472903773 है जी ये चक्कर है। ठीक है, मैं काल कर लें, बस काल जरूर करना जरूरी है। ठीक है जी। अच्छा जनाब, पाकिस्तान के अंदर जो होम मिनिस्ट्री है उसने अब इमरान खान साहब के से मुलाकातों के से रावलपिंडी की अडियाला जेल में 2 वीक्स का बैन डाला है। होम डिपार्टमेंट जो है उसने आज ये नोटिफिकेशन डाला है, और उन्होंने कहा जी कि कोई भी ये इंटरव्यूज नहीं दे सकेंगे, क्योंकि एक बड़ा हाई सिक्योरिटी अलर्ट है और सारी बॉर्ड वायर्स जो हैं वो लगाई जा रही हैं जेल के बाहर, और एक फ्रेश सिक्योरिटी ऑडिट जो है वो कराया जाएगा फॉर ऑफिशियल्स ऑफ स्पेशल पुलिस ब्रांच आईबी जेल ऑफिशियल्स। और ये कहा जा रहा है जी कि ये सारे का सारा जेल प्रेमिसेस जो है इसको थॉरली सर्च किया जाए, एक क्लियरेंस ऑपरेशन जो है वो भी यहां पे कराया जाएगा। अब ये जो सारी फुर्तियां दिखा रही है पंजाब गवर्नमेंट, इसके ऊपर जो है लोगों के आज बड़ी आंखें उठी, और उन्होंने कहा जी कि हमें लग रहा है कि वही जो बातें हो रही थी कि इमरान खान साहब को जेल में मार दिया जाएगा, तो हो सकता है ऐसे हो। पीटीआई के चेयरमैन गौर अली खान जो है उन्होंने कहा जी कि मैं बिल्कुल फियर करता हूं कि इमरान खान की जान को खतरा है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो जेल के बाहर ये कर रहे थे, उन्होंने कहा जी हमें इमरान खान से मिलने से का जा रहा है, अथॉरिटीज ने हमें इन्फॉर्म भी नहीं किया कि क्या वजह है, वो सिर्फ कह रहे हैं जी कि टेररिज्म के रीजन है, तो टेररिज्म का क्या रीजन है हमको बताना चाहिए, मैं फौरन चाहता हूं कि उनके साथ मुलाकात करूं, क्योंकि मुझे उनकी हेल्थ जो है उसके ऊपर जो है खतरा है कि कहीं वो जो है उनको जो है कोई कोशिश तो नहीं की जा रही उनको कुछ मारने वगैरह की। इमरान खान साहब की जो सिस्टर है अलीमा खान, उन्होंने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो छोटी सी की है, यानी कि जाहिर है कि जेल के बाहर ही जो वो मीडिया से बात करते हैं उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं कहा जा सकता, उसमें उन्होंने एक दफा फिर से कहा है जी कि मेरे भाई की जान को खतरा है। इन्होंने पहले भी बहुत सारे जो इंटरव्यूज हैं उनमें उन्होंने ये बात कही है, और उन्होंने कहा जी कि उसको मुस्तकिल तौर पर इमरान खान को मेरे भाई को जो है वो प्रेशराइज किया जा रहा है कि तुम एक डील ले लो, तुम एक डील ले लो, तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हें निकाल देंगे इधर से। तो वो कहते हैं जी कि इमरान खान जो है वो कहता है कि मैं नहीं डील लूंगा, मैं क्यों डील लूं, आप ये जो लोगों का आपने स्टोलन मैंडेट है इसको आप वापस करो, आप मुझे डील छोड़ने का छोड़ो, आप उनको जो है ये उनका जो आपने स्टील किया मैंडेट वो आप उसको दो, डील का क्या मतलब है, क्या चाहते हैं आप, मैं डील के क्या करूं, यानी कि डील का यह मतलब होगा कि मुझे आप खामोश कराना चाहते हैं, मैं खामोश नहीं होगा। वही उसकी बहन अलीमा खान ने कहा जी कि वो उसको खामोश कराने की कोशिश कर रहे हैं और उसको बड़े सुनहरे ख्वाब दिखा रहे हैं कि तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी। वो कहते हैं जी वो ये करने को तैयार बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसने कहा जी कि आप लोगों का मैंडेट उनको वापस दें, क्योंकि मुल्क जो है उसके इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है और दिन ब दिन और खराब होगी अगर वो लोग आके बैठेंगे गवर्नमेंट में जो कि लोगों को पसंद नहीं है। तो इसके ऊपर आपको गौर करने की जरूरत है। बहरहाल वो डील नहीं लेना चाहता और ना ही वो जो है कोई खामोश रहेगा, वो खामोश भी नहीं रहेगा। ते पायने ते फिर प्रॉब्लम है, दिस इज अ प्रॉब्लम फिर है पायन। हूं पूरी कोशिश उन्होंने कर ली है, इसको डराएं, धमकाएं, तंग करें, यानी कि 6.5 फुट का बंदा, नहीं 6.5 फुट, नहीं 6 फुट का बंदा, उसको जो है 5 फुट वाले बंदे के सेल में डाला हुआ, यानी इतना उसको तंग कर रहे हैं, फिर भी वो जो है वो झुक नहीं रहा। अब इनको तकलीफ है। तो अब वाकई आज बहुत सारे लोगों ने इस बात पे, आज ट्विटर भी अगर आप देखें, ट्विटर के ऊपर ट्रेंड ही ये बना हुआ है कि इमरान खान को क्या ये लोग मार देंगे, क्या खान को मार देंगे, एंड दैट इज गोइंग टू बी एक्चुअली अ वेरी बिग ब्लंडर। अगर इन्होंने ऐसे किया तो बहुत ही बड़ा ब्लंडर करेंगे। केपी की गवर्नमेंट जो है जी, उसने पहला पंगा जो है फेडरल गवर्नमेंट के साथ डाल दिया है। केपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं अली अमीन गंडापुर साहब, उन्होंने कहा है जी कि मेरी पसंद का चीफ सेक्रेटरी आएगा और मैं कोई 3-4 नाम प्राइम मिनिस्टर को नहीं भेजूंगा, क्योंकि आपको पता ही है कि जो मुख्तलिफ सूबों में चीफ सेक्रेटरीज लगाए जाते हैं उसमें 3 से 4 नाम दिए जाते हैं। पीएम का प्रेरोगेटिव होता है कि वो उसमें से किसका नाम चुनता है। अली अमीन गंडापुर ने कहा जी मैं कोई आपको 3-4 नाम नहीं दूंगा, मुझे मेरा जो बंदा है यहां पे वो ही चाहिए है, विच इज नदीम असलम चौधरी, और ये जो शादाब अली शाह आपने लगाया है इसको यहां से हटाओ फौरन, जो है मुझे नहीं ये चाहिए अपने यहां पे। तो अब जनाब ये भी पंगा पड़ेगा है जी, और आपको पता ही है, लेकिन ये जो है शादाब साहब, इनको केयर टेकर गवर्नमेंट के बीच में लगाया गया था, और जो है वो कहते हैं जी कि इनको जो है मुझे नहीं सॉरी उल्टा मैंने नाम ले लिया, वो कहते हैं जी कि ये नदीम असलम को इंटरिम गवर्नमेंट में लगाया था, इसको हटा के मुझे शादाब चाहिए, तो मेरा जो बंदा शादाब है मुझे यहां पे लगा के दो। तो अब प्राइम मिनिस्टर इसको मानेंगे या नहीं मानेंगे,
फॉरन का सूप पी रहे हैं क्या?
हाँ 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 बिल्कुल, वो कहते हैं मैं कोई 3-4 नाम नहीं भेज रहा, बस ये मैंने एक नाम भेजा इसको अप्रूव करके अप्रूव करके भेजो
चाहिए जितने के भी नाम देते हैं। हाँ, कर दे, उन्होंने अपना बंदा
भेजना है। हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा जनाब, मोहम्मद औरंगजेब जो सीईओ थे बड़े अरसे से हबीब बैंक लिमिटेड के, पाकिस्तान का जो लार्जेस्ट बैंक है, उनको अब बनाया गया है फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर फॉर अ चेंज, थैंक गॉड बनाया गया है। उन्होंने अपना रेजिग्नेशन जो था दिया है, कल दिया था मार्च 11 को, और औरंगजेब साहब ने बड़ी खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि आई एम स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर, और मैं जो मेरे पास वैल्यूएबल लेसन मैंने जो हासिल किए हैं HBL में और बाहर काम करके, वो सारे का सारा मैं पाकिस्तान में लगाने की कोशिश करूंगा और यहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट लाऊंगा। मोहम्मद नासिर सलीम जो हबीब बैंक लिमिटेड के COO हैं, वो अब नए CEO होंगे HBL के, आफ्टर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उनका अप्रूवल अगर दे देता है। इनका जो है औरंगजेब साहब का 36 ईयर्स का इंटरनेशनल और डोमेस्टिक बैंकिंग का एक्सपीरियंस है। इन्होंने काम किया है USA में, अबू धाबी में, और बड़े बड़े अदारों के साथ जैसे कि अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक, सिटी ग्रुप, अबू धाबी इस्लामिक बैंक, और HBL में ये आए थे 2017 में, और इनकी जो पॉलिसीज थी उनको बहुत सराहा गया था। तो अब ये पाकिस्तान के नए फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। कम ते पैन
डार साहब नहीं आ रहे
हैं? नहीं नहीं, डार साहब ने फॉरेन मिनिस्ट्री देती है, वो नहीं कह रहे, वो कह रहे मैं नहीं खेल रहा इस दफा। हाँ, उनको बहुत ज्यादा जब आई थी ये इंटरिम गवर्नमेंट आई थी उसमें बहुत उनको सुनाई गई थी। और जनाब आज एक जो अपॉइंटमेंट की गई उसके ऊपर आंखें तो बहुत उठाई गई, लेकिन उस बंदे का प्रोफाइल जो है बड़ा जबरदस्त है। PMLN लेड जो गवर्नमेंट है वहां पे, उन्होंने कहा जी कि सिंध के अंदर जो सिंध के चीफ मिनिस्टर है मुराद अली शाह, उनके ब्रदर इन लॉ सैयद आसिफ हैदर शाह जो हैं, उनको बनाया जाएगा सिंध का चीफ सेक्रेटरी। अब जब ये बात आई तो दुनिया बड़ी भड़क गई पाकिस्तान में, वैसे ही आजकल भड़के हुए हैं जिस तरह के वहां पे फैसले किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि जो है वो एक आदमी चीफ मिनिस्टर है, उसका ब्रदर इन लॉ ऑफ चीफ सेक्रेटरी भी लग के आ जाएगा, तो मतलब है ये क्या है, अन्ना वंडे रेवड़ियां मुड़ अपने आन उड़े, ये क्या चल रहा है। लेकिन हुआ यह है कि ये प्रॉपर सिविल सर्विस के बंदे हैं और ग्रेड 22 के अफसर हैं, और जो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज थी उनके अंदर ये पास होके आए थे। खैर वो बहुत हाई नंबर नहीं उसका होता, लेकिन बहरहाल एनीवेज, तो करंटली जो है ये सेक्रेटरी क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंट कोऑर्डिनेशन डिवीजन में हैं। इन्होंने जो है पाकिस्तान सिविल सर्विस को ज्वाइन किया था 1993 में, और बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे रहे थे, जिसमें एक था कमिश्नर हैदराबाद एंड कराची, जिसमें लोगों ने इनकी काफी तारीफ की थी कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। उसके बाद कैबिनेट डिवीजन के स्पेशल सेक्रेटरी थे, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर फेडरल सेक्रेटरी थे, पावर डिवीजन के अंदर सेक्रेटरी थे, वैसे पेशे से इंजीनियर हैं, लेकिन इन्होंने एमबीए जो अपना किया है, एमबीए भी किया है सिविल इंजीनियरिंग के अलावा, एमबीए भी इन्होंने किया है आईबीए कराची से, इसके अलावा इन्होंने मास्टर्स जाके की थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, और फिर इनको फेलोशिप मिली थी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और स्टैनफर्ड यूनिवर्सिटी से, तो वहां से बहुत ज्यादा जो है ये सीख के आए हैं, और कहा जाता है कि बहुत एक्सेप्शनल इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स हैं, तो इसलिए इनको इस ओहदे पे लगाया जा रहा है। बात तो वही वैसे है, अगर हार्वर्ड और स्टैनफर्ड दोनों से ही पढ़ के आए हुए हैं तो कुछ तो बंदे भी जो कुछ तो होगा। हाँ, क्यों ऐसे फुदू पैसेंजर तो मतलब है, वैसे आप फेरा टोरा मार सकते हैं वहां पे, घूम फिर के आ सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास डिग्री है हार्वर्ड या स्टैनफर्ड की, फिर तो बड़ी बात है जी ऐसे। अच्छा जी, क्योंकि हमारे मुल्क के बहुत सारे लीडरान और भी गए थे हार्वर्ड शार्वर्ड फिरते रहे, मगर डिग्री नहीं थी,
नहीं थी उनके पास। इससे पहले जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे, वो भी फाइनेंस मिनिस्टर थे।
हाँ हाँ, वो तो पेन स्टेट से लाए थे ना। वैसे तो जरदारी साहब भी बड़े दावे करते थे ना कि मैं लंदन के किस स्कूल से पढ़ा हुआ, लंदन के स्कूल ने कह दिया हमारे पास कभी नहीं है।
लास्ट नेम दूसरा था।
अच्छा, दूसरा नाम था। अच्छा ठीक है, ओ सॉरी माय बैड मजे भाई,
अब पहले तफ्तीश करके आया।
अच्छा ठीक है मजे भाई, आइंदा से इंशाल्लाह मैं बिल्कुल करके आऊंगी। अच्छा जनाब, जितने दिन खोती उतने आन खलोती है जी। जो बहुत दिनों से नाराज चलते आ रहे थे मौलाना और उनकी पार्टी JUIF, उनकी फाइनली पीपीपी के साथ दोस्ती हो गई है।
हाँ,
क्योंकि उनको देने, अब उन्होंने कह दिया कि आपको उद्देश्य दे देंगे हम। ठीक है जी। अच्छा जी, अब जी मैंने आपको बताया ही था कि बिलावल साहब जो थे वो तो गए हुए थे चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज से मिलने के लिए, और यूसुफ रजा गिलानी जो थे उनको कहा गया था कि नैयर बुखारी के साथ आप जाके JUIF के डेलीगेशन से मिले। तो बहरहाल जी उनके साथ मुलाकातें हुई। आज JUIF के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब जो है, उन्होंने कहा जी हमारी मीटिंग बड़ी अच्छी रही, मतलब अच्छी रही, सानू भी उन सीटा मिल जाएंगी। तो पीपीपी ने इनको कहा जी कि मार्च 14 को जो ये सेनेट का एक इलेक्शन हो रहा है, जो एक खाली हो रही है सीट, उसके ऊपर आप गिलानी साहब को हम खड़ा कर रहे हैं, तो आपने उनको सपोर्ट करना है। तो JUIF ने कहा जी बिल्कुल पायाना सी उन्होंने सपोर्ट करेंगे, इसके बदले में JUIF के जो कैंडिडेट बलूचिस्तान में है उसके पीछे अब पीपीपी खड़ी रहेगी, इसके अलावा इनको जो है पार्लियामेंट में विदाउट कंटेस्ट किए हुए आने जाने का रास्ता मिलेगा। ठीक है पाए, ठीक हो, खुश हो, बस हो गए मसले। और जनाब आज सिंध असेंबली के अंदर जो 9 मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक तो पहले ओथ उठाई गवर्नर हाउस में, और उसके बाद चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब ने उनको डिफरेंट जो है पोर्टफोलियोज दिए हैं। जो नए मिनिस्टर्स जो हैं सामने आए हैं वो हैं शर्जील मेमन, डॉक्टर अजरा पचूहू, सैयद नासिर हुसैन, सरदार अली शाह, सैयद गिलानी, जाम खान शोरो, जिया लंजर, मोहम्मद बख्श माहर, अली हसन जरदारी और जुल्फिकार अली, ये सारे जी इनके मिनिस्टर्स होंगे। इससे पहले जो है फेडरल गवर्नमेंट में जो जिन लोगों ने ओथ ली थी उनको भी आज पोर्टफोलियोज जो हैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिए हैं। ख्वाजा आसिफ साहब को डिफेंस, इसहाक डार मजद भाई के फेवरेट फॉरेन मिनिस्ट्री, एहसन इकबाल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, मोहसिन नकवी होम मिनिस्ट्री एंड नारकोटिक्स कंट्रोल, अहद चीमा इकोनॉमिक अफेयर्स एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन, मुसद्दक मलिक एनर्जी एंड पेट्रोलियम, रियाज हुसैन पीरजादा हाउसिंग एंड वर्क्स, अताउल्ला तारड़ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, अवेस लगारी रेलवे हेरिटेज एंड कल्चर, जाम कामिल कादिर सॉरी जाम कमाल ट्रेड, अलीम खान प्राइवेटाइजेशन एंड बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, चौधरी सालिक ओवरसीज पाकिस्तानीज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, अजीम आजम नजीर तारड लॉ, राणा तनवीर इंडस्ट्रीज। और इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है जो है कि भाई आप दिन रात काम करें, और अगर आप काम नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको खींचा भी जाएगा। आज बड़ी सख्ती से बात कीजिए आज।
अच्छा जी।
हाँ, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ उन्होंने कहा हम बहुत खींचेंगे आपको, बहुत ज्यादा खींचेंगे अगर आपने सही काम नहीं किया। ठीक है जी। अच्छा जी। अच्छा जनाब, आज बहुत ही दो इतने कोई अजीम अनाउंसमेंट्स हुई हैं कि वाह वाह वाह, मैंने कहा जी ये अजीम अनाउंसमेंट्स तो आपको अच्छा। जरूर सुनाइए, मतलब अगो पिछो असी खिंच लांगे लेकिन असी सैलरी नहीं लेनी। ठीक है जी।
अच्छा।
सबसे पहले अनाउंसमेंट आया जी प्रेसिडेंट जरदारी साहब का, जिसके बारे में हमने कल बताया था ना, 60 मिलियन US डॉलर तो अनफ्रीज हुए थे स्विस बैंक, उसके अलावा क्या कुछ है हमें मालूम नहीं है। तो जरदारी साहब ने कहा मैं अपनी सैलरी नहीं लूंगा एज प्रेसिडेंट, है जी। उन्होंने कहा जी कि मुल्क के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं और हमको बहुत प्रूडेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जरूरत है तो इसलिए मैं नहीं लूंगा। अच्छा जी, अब इससे जो है बहुत ही ज्यादा, ये जो इंटीरियर मिनिस्टर नए बने हैं मोहसिन नकवी साहब, बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए। मोहसिन नकवी साहब ने भी कहा जी मेरा कायद कह रहा है तो मैं कैसे हो सकता है कि ऐसे ना करूं। उन्होंने कहा जी मैं भी, चूंकि मुल्क में बहुत ज्यादा जो चैलेंजेस हैं और मुल्क जो है उसको सर्व करने के लिए मैं इधर आया हूं, इसलिए मैं भी जो है पैसे नहीं लूंगा, सैलरी नहीं लूंगा। यानी क्या, पिछोसी बढ़ा लेंगे पैसे, फिक्र की कोई बात नहीं,
सैलरी नहीं लेंगे,
सैलरी नहीं लेंगे आप, बिल्कुल नहीं लेंगे, ठीक है जी।
बोनस अच्छा, लेंगे।
हाँ हाँ, बोनस से लेना पड़ता है ना, फिर इतना हार्डवर्क कर रहे हैं, मुल्क कौम के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जनाब, हिंदुस्तान के अंदर भी अब चूंकि इलेक्शन रोज रोज नहीं आ रहे हैं, चीजें बेतहाशा भड़क गई हैं, है जी। आज बीजेपी को और जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसको ऑपोजिशन ने बेतहाशा खींचा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है उसने कहा कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स लॉन्च किए थे बीजेपी ने, ये बिल्कुल गलत हैं। कांग्रेस के जो एमपी हैं मनीष तिवारी, उन्होंने कहा जी कि बैंक जो है वो सारे सबूत दे कि किसको दिए, किसकी इन्वॉल्वमेंट है, कहां गए, यानी कि किसने दिलाए हैं ये झुमके, किसको दिए हैं ये झुमके और किसने पहनाए हैं ये झुमके जी, तो बताओ किसको दिए हैं ये झुमके, इलेक्टोरल बॉन्ड्स किसने दिए और किसको दिए और किसके कहने पे दिए, उन लोगों को आइडेंटिफाई करो। राहुल गांधी जी ने कहा जी लोकसभा में बीजेपी अपनी साख को बचाने के लिए जो है वो ये सारा कुछ कर रही थी, लेकिन मोदी जी का असल चेहरा जो है वो सामने आ रहा है, ये तो बहुत बड़ा स्कैम है जो कि सामने आया है। क्योंकि और मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट को कि ये सारे का सारा ट्रूथ जो है ये सामने लेकर आओ। टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस की लीडर महुआ मोत्रा ने कहा कि वाह जी वाह क्या बात है, हिन्दुस्तान के अंदर एक ही बॉन्ड चल रहा है, SBI और मोदी जी, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और मोदी जी। कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा जी कि ये डिलिबरेटली किया जा रहा है और मैंने तो पहले ही प्रिडिक्ट किया था कि ये सारे का सारा स्कैम है, मेरी बात उस वक्त नहीं सुनी गई, लो अब सुप्रीम कोर्ट सामने लेकर आ गई है। CPIM के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी ने कहा जी ये बहुत ही सस्पिशियस किस्म की हरकतें हैं SBI की, इनको सारे का सारा चीजें सामने लाके और एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लेकिन ये समझ नहीं मुझे आ रही कि ये इलेक्शन होने के बाद चीजें लाएंगे, क्योंकि फिर इनको होगा कि मोदी जी और बीजेपी इनको जो है एक्सपोज करने से प्रोटेक्ट कर लेंगे, तो ये क्या चल रहा है। बहरहाल जी ये अब बड़ा धमाका वहां पे जो है चल रहा है। इसके अलावा जनाब, जो कल हमने आपको बताया था कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो है अब इम्प्लीमेंट कर दिया है, उसके ऊपर भी आज जो है बेतहाशा लिए दिए हुई वहां पे हिंदुस्तान में। बीजेपी के यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने अलबत्ता आज बहुत ज्यादा गुस्से का इजहार किया, उन्होंने कहा ये जो गरीब लोग हैं, हिंदू फैमिलीज जो उनको रेप किया जा रहा है दिन दिहाड़े, उनको फोर्स मैरिजेस की जा रही है, उनके रिलीजियस कन्वर्जन किए जा रहे हैं, ये सिख जो हैं जिनकी गुरु ग्रंथ हमने देखी थी, और ये बुद्धिस्ट और जैन और पारसी और क्रिश्चियन जिनको बांग्लादेश पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मारा जा रहा है, उसको हिंदुस्तान अगर सहारा नहीं देगा तो और कौन देगा, तो ये क्यों जो है ऑपोजिशन वाले इसके इतना खिलाफ हैं। इसके ऊपर फिर ऑपोजिशन भड़क गई, कांग्रेस और टीएमसी और CPIM, उन्होंने कहा जी कि ये वायलेट करता है द वैल्यूज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसके अंदर आप मुसलमानों को, क्योंकि बहुत सारे मुसलमानों को भी प्रोसिक्यूट किया जा रहा है इन कंट्रीज में, उनको आपने अलहदा कर दिया है, विच इज अगेंस्ट इंडिया सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन, और ये चूंकि इलेक्शन आने वाले हैं तो इसलिए आप डिवीजन पैदा कर रहे हैं। कांग्रेस के लीडर जयराम रमेश ने कहा जी कि आप जो है पोलराइज कर रहे हैं ये सारे का सारा, और खासतौर पे जो वेस्ट बंगाल और आसाम में लोग हैं वो बहुत ज्यादा सफर करेंगे। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने कहा बिल्कुल लोग इसमें सफर करेंगे और मैं ये बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने दूंगी। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये बीजेपी जो है अपनी गंदी पॉलिटिक्स हमेशा खेलता है, लेकिन जो है लोग इनको बता देंगे इलेक्शन में कि क्या सही और क्या सही नहीं है, इसके बाद जो है CAG आएगा तो ये जो है वो ये बिल्कुल सही नहीं है, ये इश्यूज को सॉल्व नहीं करेगा, ऐसे है जनाब। तो वहां पे भी जनता भड़की हुई है। सलमान खान साहब जी हैं, उन्होंने कहा जी आज अपने जो है इंस्टाग्राम पे एक तस्वीर जो है लगाई है साजिद नाडेड वाला और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर AR मुरुगादोसा के साथ, और वो कह रहे हैं मैं बड़ी एक जबरदस्त एक्साइटिंग मूवी ला रहा हूं और ये एक्साइटिंग मूवी जो है उसके लिए मुझे आपका लव और ब्लेसिंग चाहिए, ये रिलीज होगा ईद 2025 में। दिलजीत दोसांझ ने भी अपने इंस्टा और एक्स के ऊपर जो है वो एक मॉनेस्ट्री जो है बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री वो कर रहे थे मंक्स के साथ विजिट, उसके ऊपर वहां पे डांस वांस किए, जो स्नो कैप्ड हिमाचल प्रदेश की जो माउंटेन्स हैं उसके ऊपर गाने वाने गाए, और ये जो नई फिल्म आने वाली है क्रू उसका जो गाना है नैना, उसका नैना दा कहना, उसके ऊपर बड़े मजे किए और दोस्तों के साथ फन किया। तो दुनिया जो है वो बड़ी पागल हुई। आपको पता ही है दिलजीत दोसांझ को लोग बड़ा पसंद करते हैं, बड़ा क्यूट बेबी फेस है उनका, तो बड़ी अच्छी फिल्मों में काम भी उन्होंने किया। और जनाब ट्विंकल खन्ना ने अपने ही मियां अक्षय कुमार का मजाक बनाया, अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी पे जिस तरह का ये डांस कर रहे थे, कहते हैं जी एक तरफ थी तीन खान्स की परफॉर्मेंस, ये असल में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है टाइम्स ऑफ इंडिया में, उसमें उन्होंने ये लिखा है कि एक तरफ थी जबरदस्त धांसू किस्म की तीन खान्स की डांस और एक तरफ मेरा मियां था ऐसा डांस कर रहा था, लग रहा था कि ये ऑयल डिगिंग कर रहा है और इसने जो है ऑयल डिगिंग ये इधर जमुना नगर की जमीन से ही करना है, जमुना नगर है वो जहां पे कि इनकी शादी हो रही थी, प्री वेडिंग यानी कि जो चल रही थी। और जनाब बाबर आजम ने आज एक इंटरव्यू दिया है, बाबर आजम ने कहा जी कि मैं जो ओपनिंग करता था लेकिन मैं ओपनर नहीं रहा क्योंकि मुझे लगा कि जी मुझे जो है वन डाउन जो जाना चाहिए मुझे पसंद नहीं था, लेकिन चूंकि मुझे कहा गया तो मैं इसलिए मैं वन डाउन खेला। आपको पता ही है कि पेशावर जलमी के स्किपर हैं और पेशावर जलमी पीएसएल 9 में बड़ा जबरदस्त खेल रही है और इन्होंने जो ओपनिंग करते हैं सैम अयूब के साथ लोग उसको बड़ा पसंद करते हैं, तो वो कहते हैं लेकिन नहीं मुझे पीसीबी का डिसीजन आया था कि मुझे वन डाउन जाना चाहिए यानी कि थर्ड पोजीशन पर खेलना चाहिए तो मैं खेलता हूं, तो मैं उसके लिए सॉरी हूं लेकिन मुझे लगता है कि सैम अयूब बड़ा टैलेंटेड है और हम सब अपने मुल्क के लिए खेलते हैं। पाकिस्तान के शहनशाह अफरीदी साहब जो हैं 23 इयर्स ओल्ड हैं, T20 के कैप्टन हैं, लेकिन हो सकता है कि वर्ल्ड कप से पहले जून में इनसे ये कैप्टेंसी ले ली जाए और इनको रिप्लेस किया जाए एक दफा से फिर से बाबर आजम या के मोहम्मद रिजवान से, क्योंकि मोहम्मद रिजवान की जो टीम है मुल्तान सुल्तान और बाबर आजम की पेशावर जलमी दोनों ही बहुत अच्छा कर रही हैं। आज के जो मैच हुए पीएसएल 2024 में, मुल्तान सुल्तान ने डिफीट किया क्वेटा ग्लेडिएटर्स को 79 रन से और इन्होंने बनाए थे 184/4। क्वेटा जो है उसको 15 ओवर में आउट कर दिया 106 रन पे। और जनाब कैनेडियन विनिपिग की रहने वाली ब्रायन हैरिस जो है 31 वो अब पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगी स्कॉटिश टूर्नामेंट ऑफ हार्ट्स इन कैलगरी के अंदर क्योंकि इन्होंने ले लिया था लिगा ड्रॉल जो कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की लिस्ट ऑफ प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेज में है। एज अ रिजल्ट ये शी वुड नॉट बी एबल टू प्ले इन द नेशनल वुमेन्स चैंपियनशिप। एंड एब्सोल्यूटली अवर लास्ट न्यूज विच इज अ बिग न्यूज फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान के जो अमान खान हैं शिकागो पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, ही इज पार्ट ऑफ द एशियन बेसबॉल चैंपियनशिप, बाहर खेलते हैं अमरीका में लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है 18 ईयर ओल्ड आ रहे हैं, ही इज अ पिचर और इनकी स्पीड है 93 माइल्स पर आवर। और इन्होंने अभी साइन की है अपनी डील लियोन रायन यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैरोलिना के लिए, लेकिन वो कहते हैं पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है बेसबॉल का और ये गेम मैं पाकिस्तान में लाऊंगा। ये थी जी हमारी
बात, बहुत बहुत शुक्रिया आपका,
थैंक यू।
और इंशाल्लाह ताला कल फिर आपके साथ होंगे हम ताजा तरीन खबरों के साथ। बस इतना बता चलूं कि अब से लेके आप 9 बजे तक आप प्रोग्राम को सुनते रहिए, देखते रहिए, यहां पर यहीं पर वेस्ट ऑफ 24 आवर्स देख सकते हैं। आज जो है आप ट्यूसडे, आज जो है अफ्तार का टाइम जो है 7:20 पे आज अफ्तार का टाइम होगा, मीन्स मगरब का टाइम है। एंड कल सुबह सुहूर का टाइम जो है या फजर की नमाज का टाइम जो है 6:15 पे अजान, तो अजान पे आप खाना रोक दीजिएगा और वो जो है 6:30 पे इकामा दिया जाएगा। अगर आपका ताल्लुक अहले तशी से है अल्हम्दुलिल्लाह, सो आपका आज अफ्तार का टाइम जो है 7:35 पे 7:35 पे और कल सुबह सुहूर का टाइम आपका 6:10 पे।
थैंक यू मच, वी विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह।
एंड इसी के साथ ही बस अब मैं ले चलता हूं आपको प्रोग्राम इन प्रोग्रेस विद जीशान, कल तक आपके साथ, अल्लाह हाफिज।
की तुसी अपने घर अते ऑटो इंश्योरेंस दे रिन्यूअल करवाना चाहते हो ते तुसी चंगी कीमत भी तलाश रहे हो ता फिर घबराउण दी लोड़ नहीं, तुसी जाओ ऑल स्टेट एजेंट एजेंसी दे राजा मुदसर कोल, तुसी एक घर ते दो कारा दी इंश्योरेंस करवा के इना तो $1,775 दी बचत भी कर सकते हो। हुणे संपर्क करो राजा मुदसर नू 6472903773 यानी 6472903773।
ट्रकिंग वाले वीरो त्यार नाल सुनो ट्रक जिद्दा दा भी चलाने हो मैनुअल जा ऑटोमैटिक क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो ट्रक दी बढ़िया सर्विस ले क्विक ट्रक ल्यूब लॉजी तीजी लोकेशन भी खोलती है एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी आहो जी कोई अपॉइंटमेंट नहीं ड्राइव थ्रू फैसिलिटी एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप 519-622-0660 या quicktrucklube.com QTL because we care
अपनी कम्युनिटी दा सब तो वड्डा वधिया क्वालिटी वाला ते सब तो पुराना सोडी फर्नीचर हर घर दी पहचान बन चुकी है
ओ फिर बने भी क्यों ना क्योंकि बेडरूम सेट सोफा सेट मैट्रेसेस डाइनिंग टेबल डेकोरेटिव आइटम्स गल कीजी सारे घर दा फर्नीचर वधिया क्वालिटी ते डिस्काउंटेड प्राइस ते मिल जांदा सोडी फर्नीचर तो 3 साल ले नो ब्याज
142 कैनेडी रोड ब्रैम्पटन 9058747171
फैशन पाकिस्तान लाउंज लेकर आ रहे हैं मिसी सागा में एक रोजा मल्टी डिजाइनर ईद एग्जीबिशन 24 12 पाकिस्तानी डिजाइनर्स के लेटेस्ट एंड यूनिक आर्टिकल्स जो ईद पर बनाएंगे आपको सबसे मुनफरिद इतवार 17 मार्च दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक प्लीज डू कम ओवर हिल्टन गार्डन इन 1870 मैथिसन बुलेवार्ड मिसी सागा डोंट मिस इट
खिदमत जिम्मेदारी से बढ़कर ताजीम इज्जत से बढ़कर मुस्कुराहट खुशी से बढ़कर ताल्लुक रिश्ते से बढ़कर क्योंकि इंडस अस्पताल से बढ़कर अपनी जकात दीजिए पहले से बढ़कर
770 AMDN نشریات سنن تے حالات حاضرہ تو باخبر رہن دے واسطے نیوز انفارمیشن انالیسس الیکٹرک گڈیاں دے وچ ای آواز آفیشل ایپ یا ساڈی ویب سائٹ ای آواز.com لوکل نمبر 6478724900